नमस्कार भारत, 20 अप्रैल दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में नए फैसले से बीजेपी की आंतरिक राजनीति गरमाई।
आडवाणी जो कि सोच रहे हैं राष्ट्रपति बन जाने की, या मुरली मनोहर जोशी, अब उनका तो चांस गया, तो ये भाजपा के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में खूब ये उबाल आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर केस चलाने का दिया है आदेश। कश्मीर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 2 दिन और स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। क्या चल रहा है कश्मीरी छात्रों के दिमाग में?
चलो हम परसों की 6 महीने का हड़ताल, उसके बाद चलो सिचुएशन और ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद और वही सिचुएशन, तो उससे फिर दिमाग पे असर पड़ जाता है।
और दुनिया जहान में आज चर्चा होगी तुर्की की, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इसमें भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में रोज सुनवाई होगी और इस दौरान किसी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। अमरीका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने ईरान पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। टिलरसन ने कहा कि ईरान बिना किसी वजह के लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए टिलरसन ने कहा कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के बावजूद उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।
ईरान इज द वर्ल्ड्स लीडिंग स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एंड इज रिस्पांसिबल फॉर इंटेंसिफाइंग मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स।
ईरान दुनिया भर में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश है और सीरिया, यमन, इराक और लेबनान जैसे देशों में गड़बड़ियां फैलाकर वो अमेरिका के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ईरान ही वो देश है जो इसराइल पर लगातार हमलों को उत्साहित करता रहता है। ईरान को रोका नहीं गया तो वो भी उत्तर कोरिया के रास्ते पर चला जाएगा। ये थे अमरीका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की एक टीम ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में सीरिया में हुए रासायनिक हमले में सारिन गैस या इससे मिलते जुलते किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। सारिन गैस इंसान के तंत्रिका तंत्र पर हमला कर उसे निष्प्रभावी बना देती है। हमले के शिकार 10 लोगों के सैंपल की प्रयोगशाला में जांच से ये बात सामने आई है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए इस रासायनिक हमले में 87 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। सीरियाई सेना ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। तुर्की के चुनाव आयोग ने रविवार को हुए जनमत संग्रह में गड़बड़ी के तमाम आरोपों को नकार दिया है। तुर्की के विपक्षी दलों ने जनमत संग्रह में धांधली के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग के 10 सदस्यों ने दोबारा वोटिंग की अपील खारिज कर दी। सिर्फ एक ही सदस्य ने कहा कि वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। इस जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें कई नए अधिकार मिल गए हैं। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल CHP पार्टी के नेता बुलहांत तेस्कान ने कहा कि उनकी पार्टी अब कानूनी लड़ाई लड़ेगी और जनमत संग्रह का परिणाम रद्द कराने की मांग करेगी।
Şu anda iç hukuk yolları Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı olarak kapandı ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak
चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब जनमत संग्रह की समीक्षा की अंदरूनी प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन हमारे पास कानूनी रास्ता अब भी बचा हुआ है। हम पहले इसे संवैधानिक अदालत तक ले जाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो यूरोपीय मानवाधिकार अदालत तक भी ये मामला ले जाएंगे, क्योंकि हम एक पार्टी के तौर पर खुद के लिए, साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने जनमत संग्रह में राष्ट्रपति के खिलाफ वोट दिया है। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल के नेता बुलहान तेस्कान के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के जल्दी चुनाव कराने के प्रस्ताव को हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति मिलने के बाद वहां चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा कंजर्वेटिव पार्टी का कार्यकाल 2020 तक का है, लेकिन अब ब्रिटेन में इसी साल 8 जून को चुनाव होंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स ने जल्दी चुनाव कराने के प्रस्ताव के पक्ष में 522 और विरोध में सिर्फ 13 वोट पड़े। वेनेजुएला में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद पूरे देश में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और विपक्ष इसके लिए राष्ट्रपति निकोलास मडुरो को जिम्मेदार मान रहा है। बीबीसी समाचार।
तारीख 20 अप्रैल दिन गुरुवार। नमस्कार, भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। अब 24 साल से भी ज्यादा समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 13 नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से ही बीजेपी की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की मुलाकात हुई तो उमा भारती ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद अपना फैसला वापस ले लिया। विनय कटियार कह रहे हैं कि उन्हें जेल जाने से कोई परहेज नहीं। इस मामले को लेकर क्या चल रहा है बीजेपी में और किस तरह ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है, सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, उनमें कई ऐसे नेता भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आज कथित तौर पर हाशिए पर हैं। विनय कटियार भी उनमें से एक हैं और इस फैसले से जैसे उन्हें नई ऊर्जा मिल गई है।
जब तक चाहे कोर्ट रखे, जितनी सजा चाहे देना उतनी सजा दे, लेकिन हम जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।
इनमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भी नाम हैं, जिनके बारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि इनमें से कोई एक शायद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। बताया जा रहा है कि फैसले के बाद आडवाणी और जोशी की मुलाकात भी हुई। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी भले ही बताया जाता हो, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा राजनीतिक रहा है। अब जब एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में आया है तो क्या राजनीति को भी प्रभावित करेगा? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
मुझे तो लगता है इसमें भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा इफेक्ट होगी, नॉर्मल राजनीति नहीं इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि वजह ये है कि अयोध्या का पॉलिटिकल जो बुराना था उसका दौर खत्म हो चुका है। मोदी का बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। मोदी का राइज इनटू पॉलिटिक्स में अयोध्या का कोई रोल नहीं, तो मोदी को उससे कोई उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसे मालूम है कि इसकी जो पॉलिटिकल वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन आडवाणी जो कि सोच रहे हैं राष्ट्रपति बन जाने की, या मुरली मनोहर जोशी, अब उनका तो चांस गया, तो ये भाजपा के अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में खूब ये उबाल आएगा।
शरद प्रधान इस विवाद को काफी नजदीक से देख चुके हैं और उनका कहना है कि वो इस मामले में खुद भी एक चश्मदीद के तौर पर गवाही दे चुके हैं। सीबीआई की इस मांग और फैसले की टाइमिंग पर वो कहते हैं,
इस देश में सीबीआई जब कांग्रेस राज था तो कांग्रेस के कहने पर चलती थी, अब ये सीबीआई का इंडिपेंडेंट रोल तो जमाना हो गया, खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं एकदम से सीबीआई को जोश आ गया। मैं सीबीआई से बड़ा क्लोज, मेरा एसोसिएशन रहा इस पूरे केस में, तो इसलिए मैं इससे बड़ी क्लोजली वाकिफ हूँ। ये इस तरीके से ये जो दिख रहा है वो इतना सिंपल नहीं।
जिन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा उनमें केंद्रीय मंत्री उमा भारती का भी नाम है। विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उमा भारती ने फैसले के बाद ये घोषणा की कि वो गुरुवार को अयोध्या जाएंगी। माना जा रहा था कि शायद अयोध्या जाकर वो इस्तीफे की घोषणा करें, जिसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ हों, लेकिन बाद में उन्होंने अयोध्या जाने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री को भी लपेटने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल,
हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे मौकों में वो नैतिकता भूल जाते हैं। अब हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई आपको नैतिकता याद है या नहीं।
बहरहाल बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है तो इससे राजनीति का अब प्रभावित रहना संभव नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि यह मामला देश और प्रदेश की राजनीति के अलावा बीजेपी की आंतरिक राजनीति को कितना प्रभावित करता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
लेकिन क्या इससे सिर्फ बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता ही प्रभावित होंगे या फिर मोदी सरकार पर भी इसका कुछ असर होगा? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का बार बार वादा करने वाली बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या मोदी सरकार के लिए भी ये झटका है? वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन,
देखिए उनकी छवि पे तो झटका पहुंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपके इतने जो बड़े नेता हैं उनमें एक मंत्री भी शामिल है सुश्री उमा भारती, इनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था एक जमाने में, जो बाद में उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई, उसको दोबारा रीइंस्टेट किया गया, केस चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मोदी सरकार के पूरे इमेज पे खड़ा होता है। इसके साथ साथ आज भी जो है आदित्यनाथ राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर आप कहां बनाएंगे, वहां जहां पे मस्जिद को तोड़ा गया, किन लोगों ने किन परिस्थिति में तोड़ा गया, अब इसकी जांच हो रही है, इसमें मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के इमेज को एक सेटबैक तो पहुंचा ही है। बीजेपी अब पावर में है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अभी चुनाव भी जीत के आई है, और एक फिरका प्रस्त जो सोच है बीजेपी का और जो आरएसएस वालों का है, इसका प्रचार भी होता है और इसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन मेजोरिटी की बात करें तो रूल ऑफ लॉ के पक्ष में अभी भी लोग हैं। मोदी की जो सियासत है या हिंदुत्व की जो सियासत है वो एक नफरत की सियासत है, वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की सियासत है, और कोर्ट का जो फैसला वो ये है कि भाई मजहबी आपके ख्याल विचार जो भी हो, लेकिन कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि आप कानून अपने हाथ में लेके एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को डिमोलिश करें। तो मुझे लगता है कि ये इस हिंदुत्व बनाम रूल ऑफ लॉ ये लड़ाई है, ये एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक अंतर्विरोध है। रूल ऑफ लॉ जहां मजबूत होता है वहां पे हिंदुत्व जैसे और या कोई भी कट्टरपंथ, कोई भी फनाटिसिज्म, कोई भी ऐसा जो एक पॉलिटिकल स्टैंड है जो कहता है कि भाई हमारा जो इडियोलॉजी है ये कानून से ऊपर है, इस पॉलिटिक्स को झटका पहुंचा क्योंकि कोर्ट ने कहा है आपका बिलीफ चाहे जो भी हो, आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। असर्शन जो है मेरे ख्याल में 25 साल लेट आया है, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट का ये कहना बहुत जरूरी है, एक इसकी अलग अहमियत है, खासतौर पे इन दिनों जब बीजेपी की सरकार अब जो है सीबीआई और सरकार के हाथ में मामला चला गया, क्योंकि केस की प्रोसिक्यूशन जो है यही लोग चलाएंगे, और मुझे लगता है कि कोर्ट की निगरानी रहनी चाहिए इस पे, क्योंकि सीबीआई या सरकार के हाथ में बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हैं जिससे केस को डिरेल किया जा सकता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब चर्चा कश्मीर की। पिछले कुछ दिनों से भारत प्रशासित कश्मीर में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के कारण माहौल तनावपूर्ण है। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज दो दिन और बंद रहेंगे। श्रीनगर से सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी में बीते तीन दिनों से जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी कॉलेजों में अगले दो दिनों तक शिक्षा को स्थगन किया है। बीते सोमवार को घाटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कश्मीर के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को दो दिन के लिए बंद किया था। सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई थीं। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने टेयर गैस के गोले दागे जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। कई जगहों पर छात्रों ने पुलिस पर पत्थर भी मारे थे। छात्रों ने सोमवार के प्रदर्शनों के दौरान भारत विरोधी और आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। छात्रों का प्रदर्शन दरअसल 15 अप्रैल को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में कायम डिग्री कॉलेज के छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा बलों के एक्शन के खिलाफ हो रहा है, जहां कथित तौर पर छात्रों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस कॉलेज कैंपस में अंदर दाखिल हुई, जिस पर कॉलेज के छात्रों ने एतराज जताया था, जिसके बाद कॉलेज छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें हुई जिसमें करीब 50 छात्र घायल हो गए थे। तहम पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि वो कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कॉलेज से 200 मीटर दूर एक नाका लगाया था जहां तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों पर बाज शरारती लड़कों ने पत्थर मारे थे। अलगाववादियों ने 21 अप्रैल यानी शुक्रवार को कश्मीरी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा बलों के एक्शन के खिलाफ एक घंटे के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी कुट के प्रवक्ता अयाज अकबर कहते हैं,
आपको पता है यहाँ जो हमारे तालीमी इदारे हैं अब रियासती दहशतगर्दी की जद में वो भी लाए जा रहे हैं, और डिग्री कॉलेज पुलवामा में जो वाकया पेश आया जिसमें 60 से ज्यादा इनको किया गया फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद प्रदर्शन हुए, उसके खिलाफ मुख्तलिफ कॉलेज से लड़के पूरा जुलूस लेकर निकले, लेकिन उन पर भी हुकूमत की तरफ से बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया गया। हमारे तालिबान इलम है उनके साथ इजहारी यकजहती के लिए जुम्मा के दिन एक घंटे की पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है।
कश्मीर में सोमवार को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
कश्मीर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच पिछले दिनों सरकार ने छात्रों के माता पिता से अपील की थी कि वे अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन इस मुद्दे पर छात्र क्या सोच रहे हैं? वो सड़क पर उतरकर और हाथ में पत्थर लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? इन सवालों को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे एक छात्र से बात की। हम इस छात्र का नाम नहीं बता रहे क्योंकि उन्होंने हमसे अपील की थी कि उनका नाम सार्वजनिक न किया जाए।
एज अ कश्मीरी सिटीजन हम कश्मीर में ही सेफ नहीं है। फ्रॉम 2008 आई एम सीइंग दिस, हमेशा यही क्राइसिस होती है। यूथ नहीं निकल सकते हैं, मतलब अपने घरों से नहीं निकल सकते, ऐसा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है कश्मीर में। वो तो किसी और स्टेट में नहीं है, इंडिया में सिर्फ यहीं पे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? वरना कोई ऐसे थोड़ी ना सड़कों पर ऐसे निकलेगा कि विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी इश्यू कोई ऐसे निकलेगा।
जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं, उनमें से कुछ छात्र अपने हाथ में पत्थर भी उठा लेते हैं, किताबें पीछे छूट जाती हैं, तो क्या भविष्य की चिंता नहीं है?
इंडीड, मतलब भविष्य की चिंता है सबको, लेकिन जब होगा कि मतलब पीछे से होगा कि यार मैं बाहर निकल रहा हूँ घर से, डर होता है। मतलब अगर जैसे स्टेट में कोई भी आएगा वो खुद फील करेगा डर।
आपके उस भविष्य की बात कर रहा हूँ जब आप पढ़ाई करने जाते हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप...
मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मतलब चलो हम परसों की 6 महीने का हड़ताल, उसके बाद चलो सिचुएशन और ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद और वही सिचुएशंस, और वही से किलिंग्स, तो उससे फिर दिमाग पे असर पड़ जाता है और इंसान पूरा अपना पीछा, मतलब एजुकेशन पूरा कुछ छोड़कर इसी में जुट जाता है।
नहीं तो छात्रों के पीछे कोई संगठन है या वो अपनी बिना किसी संगठन के उतर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आप सड़कों पर आइए, या छात्र
नहीं, नहीं, खुद वैसा कोई कॉज नहीं है, वैसा टोटल कोई कॉज नहीं, कोई नहीं है कि आपको मुझे बोला जाएगा कि आप सड़कों पर उतर, नहीं वैसी कोई कॉल नहीं। ये पूरा इंटरनली आपसे बाय हार्ट आप करते हो, क्योंकि जो और एक बात की जो इंटरनेट का मसला है, मतलब वो मैंने और किसी जगह नहीं देखा। इंटरनेट बना, व्हाट इज दैट, मतलब इंटरनेट अगर न्यू दिल्ली में या किसी में भी, मतलब मुझे नहीं लगता है वहां पे कोई सर्वाइव कर पाएगा विदाउट इंटरनेट।
कश्मीरी छात्र से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब समय है दुनिया जहान का। आज दुनिया जहान में चर्चा तुर्की की। तुर्की एक ऐसा देश जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया में खास रणनीतिक अहमियत रखता है। तुर्की फिलहाल राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बीते रविवार को हुए जनमत संग्रह में आधे से कुछ ज्यादा लोगों ने संविधान संशोधन के पक्ष में मंजूरी की मुहर लगाई, वहीं आधे से थोड़े कम लोगों ने बदलावों को ना कहा। विरोध करने वाले ये लोग अब जनमत संग्रह को खारिज करने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बदलाव तुर्की को तानाशाही की ओर ले जाएगा, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क है कि इससे तुर्की मजबूत होगा। तुर्की में जारी उथल पुथल पर नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी वात्सल्य राय।
दुनिया जहान। यह आज का तुर्की है, संविधान बदलने को लेकर बटा बटा, एक हिस्सा खुशी में झूमता जश्न मनाता, दूसरा नाराजगी में विरोध जताता। फिलहाल तुर्की को राजनीतिक तौर पर नए सिरे से बदलने की कवायद हो रही है। बदलाव के इस दौर से तुर्की पहली बार नहीं गुजर रहा है। कभी ये देश ओटोमन साम्राज्य का केंद्र था। वक्त बदला। आधुनिक तुर्की मुस्तफा कमाल की अगुवाई में साल 1923 में गणराज्य बना। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित इस गणराज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण एशिया और यूरोप दोनों में रणनीतिक तौर पर खास अहमियत लगातार बनी हुई है। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा बताते हैं,
तुर्की बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड कंट्री है, सेंट्रल एशिया है, फिर बाल्कन रीजन है, और उधर यूरोप का एक पार्ट इससे मिलता है, खुद तुर्की का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में है, तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सीज, ब्लैक सी और दूसरे सीज को भी कनेक्ट करता है, रूट है यूरोप का, गैस पाइपलाइंस और तेल की सप्लाई तुर्की के थ्रू यूरोप जाती है।
आधुनिक तुर्की के संस्थापक कहे जाने वाले अतातुर्क आज भी देश के सबसे बड़े आइकन है, लेकिन बीते एक दशक के दौरान एक और नाम अतातुर्क को हासिल रुतबे के करीब पहुंचने की कोशिश में है, रचेप तैयब अर्दोआन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तुर्की मामलों के विशेषज्ञ ए के पाशा कहते हैं,
कहीं भी आप तुर्की में जाएंगे तो अतातुर्क के पोर्ट्रेट के नजदीक या फोटो के नजदीक बैनर के नजदीक अर्दोगान का होता है। वो जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो भी पिछले 10 सालों से या 12 सालों से किया हूँ वो कंपेरेबल अतातुर्क जो उन्होंने किया, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अतातुर्क का रुतबा और उनका पोजीशन बहुत घट के अलग है।
मामूली पृष्ठभूमि वाले अर्दोगान ने राजनीति में तेजी के साथ कामयाबी हासिल की और अपने खाके के मुताबिक तुर्की को भी बदलते गए। 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद राष्ट्रपति बने अर्दोगान ने अतातुर्क के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को एक तरह से तुर्की की यादों के परे धकेल दिया है। रूढ़िवादी और मजहबी तबका जो दशकों तक खुद को हाशिए पर मानता रहा उसे अर्दोगान के रूप में उद्धारक मिल गया। अर्दोगान की अगुवाई में तुर्की दुनिया की आला 20 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इस दौरान तुर्की ने खुद को एक दौर में सर्वशक्तिमान रही सेना के चंगुल से आजाद करा लिया है। राजनीति के शुरुआती दिनों में अर्दोगान की छवि यूरोप के प्रति रुझान रखने वाले सुधारवादी नेता की थी, लेकिन धीमे धीमे वो अधिनायकवादी नजर आने लगे। तुर्की पुरातन पंथी होने लगा, शराब की बिक्री और गर्भपात पर रोक लगा दी गई। अर्दोगान ने महिलाओं से अपील की कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। कमर आगा बताते हैं,
एक प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ, वो कॉमन है, वो जनरल फीलिंग ये है कि मुसलमान को कि उन्हें स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, स्ट्रांग गवर्नमेंट ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और इस्लाम भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये चीजें मुसलमानों के साथ तमाम दुनिया में बनी हुई है और वही उनको राइट विंग की तरफ भी लेके जाती है।
साल 2014 में अर्दोगान के काबिज होने के पहले तुर्की में राष्ट्रपति पद महज रस्मी माना जाता था, लेकिन आज स्थिति तकरीबन बदल सी गई है। कई लोग मानते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई। अर्दोगान मारमरिस के क्लब टर्बन होटल की एक निजी विला में छुट्टियां मनाने को रुके थे। 15 जुलाई को हथियारों से लैस करीब 2 दर्जन कमांडो अर्दोगान की तलाश में वहां पहुंचे, लेकिन खुफिया तौर पर मिली सूचना के आधार पर अर्दोगान पहले ही बाहर निकल चुके थे। इस्तांबुल के रास्ते में अर्दोगान ने तुर्की टीवी पर वीडियो कॉल किया। उन्होंने लोगों से तख्ता पलट की कोशिश का विरोध करने को कहा। फिर क्या था, तुर्की के गणराज्य बनने के बाद पहली बार लोग टैंकों के सामने तन कर खड़े हुए थे। इसके पहले तुर्की में तख्ता पलट की 4 कोशिशें कामयाब हो चुकी थी, लेकिन अर्दोगान ने 5वीं कोशिश की कहानी के अंजाम को बदल दिया। सिर्फ 12 घंटे में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और अर्दोगान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। कमर आगा कहते हैं,
तख्ता तो पलटने में वो ताकतें नाकामयाब रही, लेकिन इनका बहुत फायदा हुआ। उसमें ये हुआ कि ये एक बहुत पावरफुल शख्सियत की तरह से इमर्ज कर गए और इनको सपोर्ट भी जनता की हासिल हो गई।
लेकिन कई लोगों की राय में अर्दोगान ने लंबे समय से अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का ख्वाब संजोया हुआ था। वो तुर्की को संसदीय गणराज्य के बजाय राष्ट्रपति प्रणाली से संचालित गणराज्य बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए के पाशा कहते हैं,
उनको पता था कि जब हजारों के मिलिट्री लीडर्स को डिसमिस करके जेलों में डाला गया है और जुडिशियरी को भी इग्नोर करके प्रमोशंस रोके गए थे वगैरह, ये काफी रिजेंटमेंट मिलिट्री में था। उनको पता था कि ये होने वाला है एक ना एक दिन बगावत मिलिट्री की तरफ से, लेकिन उन्होंने चालाकी से इस्तेमाल करके रेफरेंडम की तरह जनता को डाइवर्ट करके पावर कंसोलिडेट कर लिए हैं।
तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद अर्दोगान ने अपने एक वक्त के साथी और अमेरिका में बसे मौलवी फतेहउल्लाह गुलेन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। गुलेन और पश्चिमी देशों ने इस दावे पर सवाल उठाए। उधर तुर्की में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, आलोचना करने वाले पत्रकारों, लेखकों और कलाकारों पर गद्दार होने का ठप्पा लगाया जाने लगा। इसके बाद राजनीतिक तौर पर तुर्की इस कदर बट गया जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रवादी भावनाओं के साए में तुर्की ने अब अपने भविष्य का रास्ता भी चुन लिया है। संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होंगी। कमर आगा बताते हैं,
पूरी तरह से अगले 10 साल तक का इनका प्लान है पावर में रहने का और पूरी कोशिश होगी और बहुत स्वीपिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास होंगी। जजेस के अपॉइंटमेंट मिलिट्री कमांडर इन चीफ के हैसियत से टॉप पोस्टों पे अपॉइंटमेंट, ब्यूरोक्रेसी में जितने अपॉइंटमेंट होंगे, पार्लियामेंट सदर होंगे पार्टी के भी और गवर्नमेंट के भी, और पार्लियामेंट भी ये कंट्रोल करेंगे और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इनके पास होंगी, पार्लियामेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं।
तुर्की बदलाव की लहर पर सवार है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। तुर्की की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा कुर्द है। कुर्दों का आरोप है कि सरकार उनकी सांस्कृतिक पहचान खत्म करना चाहती है। दो साल के दौरान तुर्की में करीब 30 चरमपंथी हमले हो चुके हैं, जिनमें करीब 500 लोगों की मौत हुई है।
इंटरनल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ तो कुर्दिश गोरिल्लाज हैं पीकेके के, जो लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जिनसे इनकी बातचीत फेल हो गई थी और बिल्कुल ही अब दोबारा से काफी सक्रिय नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये है कि आईएसएस काफी वहां पे मौजूद है, जो सीरिया से भाग रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं और वो भी लगातार कई एक बॉम्ब ब्लास्ट कर चुके हैं।
साल 2005 से तुर्की यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने की उम्मीद लगाए है, लेकिन ये आज भी अब धुंधली होती जा रही है। एके पाशा कहते हैं,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुर्की को कभी भी ईयू का मेंबर बनाया नहीं जाएगा। 70-75 मिलियन मुस्लिम्स अगर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं तो काफी कलपली मचेगी। खुल के जो है जर्मनी और फ्रांस अपोज कर रहे हैं तुर्की की मेंबरशिप ईयू में।
फिलहाल तुर्की दो धड़ों में विभाजित नजर आता है। मुख्य विपक्षी दल CHP यानी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी समेत सभी विरोधी जनमत संग्रह पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन AK पार्टी के 64 साल के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रपति अर्दोगान तमाम आलोचनाओं के परे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अब मजबूती के साथ नवंबर 2019 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि इस रास्ते पर बढ़ते तुर्की की मंजिल क्या हो। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, प्रभात पांडे के साथ।
जी पंकज जी, तमाम अखबारों में जो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया देश भर में लाल बत्ती का VIP कल्चर खत्म करने का, वो सभी ये खबर लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो खाने की शिकायत करने वाले, खाने की गुणवत्ता की शिकायत करने वाले जो BSF के जवान थे तेज बहादुर यादव, उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, ये वाली खबर भी तकरीबन सभी अखबारों में छाई हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर खबर छापी है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसान हैं, उन्होंने कल फिर विरोध का एक नया तरीका निकाला। इसके विरोध के तरीके में एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जो है वेशभूषा बनाई और उसने दूसरे किसान की पीठ पर जो है वो कोड़े मारने का उपक्रम किया, यानी कि इस तरह से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इसके अलावा द पायोनियर अखबार में छपी खबर के मुताबिक कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा के मामले में भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया है और एक बार फिर जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की अपील की है। पाकिस्तान इससे पहले कथित तौर पर इस तरह की अपील कई बार ठुकरा चुका है।
जी,
द इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय जानने की मुहिम शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की जो महिला मंत्री हैं उनसे कहा था कि वो इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के विचार जानें। योगी पहले ही ट्रिपल तलाक की आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम बदल दिए हैं। अखबार ने चीन के टेबलॉइड ग्लोबल टाइम्स का हवाला देते हुए ये खबर छापी है और अखबार ये भी कहता है कि इस महीने की शुरुआत में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा के विरोध में उसने ऐसा कदम उठाया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। और अब चर्चा करते हैं IPL की। कल IPL के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने करीबी मुकाबले में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम को 15 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 191 रन बनाया। जवाब में दिल्ली की टीम सिर्फ 176 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से श्रेयस अय्यर ने 50 और संजू सैमसन ने 42 रन बनाए थे और इससे पहले हैदराबाद की टीम की ओर से विलियमसन ने 89 और शिखर धवन ने 70 रनों की पारी खेली थी। और आज IPL में मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा पंजाब से, मैच इंदौर में खेला जाएगा। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले सुनिए मुख्य समाचार।
BBC समाचार। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं। अमरीका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने ईरान पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की एक टीम ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में सीरिया में हुए रासायनिक हमले में सारिन गैस या इससे मिलते जुलते पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। तुर्की के चुनाव आयोग ने रविवार को हुए जनमत संग्रह में गड़बड़ी के तमाम आरोपों को नकार दिया है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, पंकज प्रियदर्शी और प्रभात पांडे को अनुमति दीजिए। और इस बीच अगर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें या विश्लेषण पढ़ना है तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।